ஓம் சாந்தி. बहन जी ने अच्छा टॉपिक दिया, लेकिन बताया था ये श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान का आधार श्रेष्ठ स्थिति, कि श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए. तो आपके मन में विचार आएगा कि श्रेष्ठ ज्ञान और कनिष्ठ ज्ञान है, तो श्रेष्ठ ज्ञान कहा तो कनिष्ठ भी होगा, साधारण भी होगा. तो श्रेष्ठ ज्ञान से श्रेष्ठ स्थिति है. तो आपके मन में जरूर विचार आएगा, तो श्रेष्ठ ज्ञान और साधारण ज्ञान या कनिष्ठ ज्ञान क्या है. आज की दुनिया में देखो, आप देखो भक्ति मार्ग में भी रामायण सुना, महाभारत सुना, गीता पढ़ी, क्या क्या नहीं किया, तो क्या हमारी स्थिति श्रेष्ठ हुई? नहीं है ना. तो अभी भी आप और भी देखो, व्हाट्सएप के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारे क्लासेस भी मिलते हैं. तो आपको निर्णय करना है कि हमको शिव बाबा का ज्ञान चाहिए कि शिव बाबा के बच्चों का ज्ञान चाहिए. ये दो चीज है. वो भी शिव बाबा के बच्चे थे, भक्ति मार्ग में भी और कोई नहीं थे, भगवान रावण के बच्चे तो नहीं थे. अब भी आपको निर्णय करना है कि आपको शिव बाबा का ज्ञान चाहिए कि शिव बाबा के बच्चों का भी ज्ञान चाहिए. क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट. अभी आपकी और हमारी अवस्था ऐसी होगी कि बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है, क्या करे क्या न करे, ये करे कि ये छोड़े, ये करे, सब अच्छा ही लगता है. लेकिन एक चीज जानना चाहिए, अच्छा लगने के बाद भी हम अच्छा लगने के लिए ज्ञान योग में नहीं आए. ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्यों आए, ये पूछना अपने आप से. भगवान से प्यार था, भक्ति मार्ग में भी था, व्रत करते थे, पूजा करते थे, क्या नहीं करते थे. वहां भक्ति मार्ग में भगवान से प्यार नहीं था और इससे भी ज्यादा था. तो यहां क्यों आए, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए? एक ही काम, पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए. यहां सोना हीरा कुछ नहीं मिलता, शरीर की बीमारी कुछ भी ठीक नहीं होगा, यह स्पष्ट जानना चाहिए. तो बहुत कुछ सुनते हैं ना, तो ये होगा ये होगा, अभी भी भक्ति में ही घूम रहे हैं. इसलिए अपना जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने का जो लक्ष्य है, शिव बाबा ने कहा मेरा सारे कल्प में एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन कर मैं घर ले जाता हूं और घर से स्वर्ग में भेजता हूं. तो स्वर्ग में कौन आएगा? जो पतित आत्मा कंप्लीट 100% प्योर हुई है. सही बताओ. ब्रह्मा बाबा को भी कहा तुम्हारी भी खांसी ये तुम्हारा है, हिसाब किताब, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं. सुनाया, फिर हमारे मन में ये करो वो करो, पानी चार्ज करके पी लो और कुछ के पी लो, तो इसी में रहते हो. विकर्म विनाश करना चाहिए, इसका तो ध्यान ही नहीं है. तब का साधारण ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, तो वो जानना चाहिए. बहुत हमने किया, व्रत किया, जप किया, क्या क्या नहीं किया, भक्ति मार्ग में किया है ना. तो पतित आत्मा पावन हुई नहीं है ना. इसलिए बार बार अपने से आप पूछते रहो. अभी भी आप देख रहे हो जितने बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, कोई भी एक साल पर, एक साल से कम नहीं होगा, एक साल से ज्यादा ही होगा कम से कम, है ना. एक साल किसी डॉक्टर की दवाई ले लो आप और उसके अंदर से क्रोध मिटा ही नहीं है अभी तक, तो डॉक्टर ठीक नहीं है, दवाई ठीक नहीं. अभी इतने बैठे हो, एक में एक भी कोई हाथ उठाओ, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी क्रोध नहीं किया, ऐसे कोई पुण्यात्मा है? फिर कोई अगर हमको देखे तो कहेंगे भगवान पढ़ाते हमको. थोड़ा सोचना भी चाहिए, ज्ञान बहुत हो गया लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में कितना आया है. इसलिए बाबा ने आप सबको चांस दिया है कि ऐसी तपस्या भूमि पर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने भी यहां बैठ के तपस्या किया, कर्मातीत बने हैं, तब जाके सारे विश्व का प्रिंस बनेंगे अपने आप नहीं. सिर्फ ज्ञान सुनना, सेंटर में रोज जाना, सहयोग करना, वो भक्ति मार्ग में भी करते थे आप। बहुत मंदिर बनाया और क्या क्या बनाया, क्या नहीं किया, यहां क्यों आए हो? ये बार बार पूछना। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पहले पूजा नहीं करते थे, मंदिर में नहीं जाते थे और ज्यादा करते थे, तो यहां क्यों आए हो? एक ही, कि पतित आत्मा को पावन करने के लिए। और अभी भी मैं पतित हूं तो कैसे पता चलेगा? पाप आत्मा पुण्य आत्मा लिखा हुआ है, कैसे कहेंगे? वो भी मुखड़ा देख ले प्राणी, रोज देखना है, रोज डॉक्टर के द्वारा जाके चेकिंग कराते हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, चेकिंग करते पता चलता है उस अनुसार क्या करना चाहिए। यहां भी रोज मुखड़ा देख लो। कौन सा मुखड़ा देखेंगे? ये तो चेहरे आईने में दिखाई देगा, तो आत्मा का कैसे देखेंगे? पुण्य आत्मा पाप आत्मा बता सकते हो? तो आप कौन सी आत्मा हो? पुण्य आत्मा, महान आत्मा है, देख लो देव आत्मा है। और बताओ कौन सी आत्मा हो? अगर क्रोध करता क्रोध आता हो उसको महान आत्मा पुण्य आत्मा कह सकते हो? तो पहले पूछा और एक ने भी हाथ नहीं उठाया, क्रोध का अंश भी रह गया तो महान आत्मा पुण्य आत्मा कह सकते हो, बाकी तो छोड़ दो। तो अपने आप को जैसे कहने से नहीं होगा ना, तब कहा कैसे पता चलेगा? जब ये आंखें बंद होते हैं रात को जब सोते हो, स्वप्न बताता है आप कौन सी आत्मा हो, किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। स्वप्न बाहर से नहीं आते हैं, दिन में ये भाई ठीक नहीं है, ये माताजी ठीक नहीं, दूसरों को कहेंगे, लेकिन मैं कौन? ये रात को जब आंखें बंद करके सोते हो तब का योग निंद्रा, ड्रीम लेस स्लीप, कोई भी स्वप्न नहीं आ रहा, तन भी सो रहा है मन भी सो रहा है, उस आत्मा को पुण्य आत्मा कहेंगे। क्योंकि अंदर के संस्कार, फिर मन में विचार बाद में आएगा, पहले संस्कार। बाबा ने कहा, आज भी कहा, बार बार कहता, आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। कहा सिर्फ बाबा को याद करने से नहीं, कहा आत्मा समझ के, कि आत्मा के अंदर पाप है। तो अपने आप को देख लो, कहां तक पहुंचे हो? द्वापर में पहुंचे, त्रेता तक पहुंचे? पूछ लो, क्रोध का अंश रहेगा तो सत्यु के गेट के अंदर जा सकते हो? हाँ मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। तो फिर और कितना साल चाहिए? कितना साल चाहिए? तो ऐसे नहीं ज्ञान में चल रहे हैं फिर कल ऐसे नहीं, ये बीमारी क्यों, ये दुख क्यों? तब कहा, चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। किया हुआ कर्म भगवान भी सामने खड़ा हो गया तो भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे किए हुए कर्म या योग बल से मिटाओ या भोग करके मिटाना है। ये मुखड़ा तो देखना पड़ेगा ना। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो, मधुबन में आए हो, बाबा ने इतना शांत वातावरण, कोई आवाज नहीं, क्यों दिया? थोड़े से बच्चों को। और जलगांव पहली दफा आया है ना, पहले कभी नहीं आया, पहली दफा चांस क्यों दिया? बाबा हरेक को चांस देता है। अपने ऐसे तपस्वी भूमि पर बैठकर ऐसी तपस्या करो, किस लिए करो? कि विकर्म विनाश करना। आज भी मुरली में कहा, आत्मा समझ करके बैठो, आत्मा के अंदर, शरीर समझ के बैठेंगे शरीर का विचार ऊपर नहीं जाएगा। तब का श्रेष्ठ ज्ञान इतना सिंपल है, बहुत कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत कुछ सुनने जाते हैं ना, तो जो रियलिटी है, वास्तविकता जो है, मूल जो है, वो भूल जाते हैं। तो कुछ भी सब कुछ सुनो लेकिन मूल को भूलो नहीं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सारी दुनिया में विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। अभी दो चार साल पहले एक जैन मुनि ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, कितने बड़े बड़े हाथी थे और कितने सालों तक वो जंगल में रहा, बिहार के जंगल में। 5 यूनिवर्सिटी वालों ने उसको डॉक्टरेट की डिग्री दिया है। उसने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया और उसने वो सन्यास बनने से पहले जैन, तो ब्रह्मा कुमार उसका ज्ञान सुना था, तो इनविटेशन यहां भेजा 5 मिनट के लिए स्पीच करने के लिए। हमने कहा 5 मिनट के लिए कौन जाएगा इधर से, छोड़ दो, कैंसिल किया। फिर उसको पता चला, उसने कहा नहीं उनको पहले बुलाओ, 1 घंटा टाइम दे दो। तो रातों रात गए, जाने के बाद उसने बात करके मिल करके अपने स्टेज पर अपने साथ बिठाया, कहता आप हमको पूरा साथ दे दो, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। हमने कहा स्वामी जी आपको क्या साथ चाहिए हमारी, किसके लिए चाहिए? कहते भारत से व्यसन मुक्त करना है। हमने कहा वो हमारा काम नहीं, व्यसन मुक्ति तो गवर्नमेंट करता है, बहुत लोग कर रहे हैं, हमारा काम है क्रोध मुक्त करना है। कहते नहीं, क्रोध को तो मिटा नहीं सकते हो। आप सोचो, क्रोध को मिटा नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी बेंगलुरु से दो साल तक हिमालय पर तपस्या करने बैठे थे एक माता, पहले मुझे लगा कन्या है, 2 साल तक जहां पानी नहीं कुछ भी नहीं, इतनी ठंडी, इतना बर्फ के गुफा में 2 साल तक। उसके बाद यहां आई तो मैंने कहा आपने हिमालय पर बैठकर क्या तपस्या किया? कहते आंखें बंद करके ओम करते। हमने कहा खाना कौन खिलाता था, स्नान कैसे करते थे इतनी ठंडी में? कहते मैं वो आंखें बंद करके बैठती थी, 2 साल में 1 दिन भी भूखा नहीं रही। तो कौन खिलाता था आप सोचो, कौन लाके देता गुफा में ऐसे इतनी ठंडी हिमालय पर, कौन लाके देगा? तो कहती थी पत्ते, 2 रोटी और सब्जी पत्ते को लपेट कर इधर बाजू में गर्म लगता, मैं आंखें बंद करके बैठती हूं ओम करते, गर्म लगता है देखा तो 2 रोटी और सब्जी एक टाइम, 2 साल में 1 दिन भी बिना खाए हुए नहीं रहे। फिर हमने पूछा कि आपने 2 साल तपस्या किया, क्या आपसे क्रोध चला गया, क्या बुरे स्वप्न नहीं आते? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरे बेटे ने शरीर छोड़ा तब उनको मैं देखने गई तो मेरे आंखों से पानी नहीं आया, तब तक मैं सोच रहा कन्या है, तब पता चले माता है। तो हमने क्या पूछा, स्थूल चीजें आंखों से पानी नहीं आया लेकिन क्रोध बुरे स्वप्न? तो शिव बाबा आकर के ऐसा ज्ञान सुनाता है, सारे कल्प में ऐसा ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, संगम पर ही थोड़े समय, आधा जीवन तो ऐसे चला गया। तब कहा ज्ञान का सागर इस दुनिया में एक ही है, उस ज्ञान के एक एक शब्द की वैल्यू जानो, बहुत कुछ खाने नहीं जाओ, थोड़ा सा खा लो लेकिन हजम करो। भगवान के एक बूंद के प्यासे, 2 बूंद भी नहीं चाहिए, और कुछ सुनने बहुत सुनने नहीं जाओ, रोज जो मुरली सुनते हो उस मुरली से एक शब्द ले लो, एक ही बस। बहुत सुन लिया और आचरण में नहीं आया क्या फायदा, सुन के क्या करेंगे आप? 30 दिन में 30 महावाक्य आपके जीवन में आएंगे, एक शब्द ले लो कोई भी जो आपको अच्छा लगा। आज आपने सुना बाबा ने कम से कम 5-6 दफा कहा बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। आज शाम को भी योग किया आपने, आत्मा समझ में किसी ने किया? पूछ लो आप, किसी ने किया? ज्ञान सुना लेकिन उसको आचरण में नहीं किया, किया आत्मा समझ के किया? बताओ कैसे किया? अभी आप मुझे बहन जी तो दिखाई देते हो, दिखाई देते ना, फिर भी बहन जी कौन है? आप कहेंगे मुझे समझो तो मैं आपको कैसे समझू? तो पूछूंगा ना बहन जी आपका नाम, कहां से आए हो, क्या करते हो, तब समझ में आएगा ना। तो आपने आत्मा कैसे समझा? आत्मा तो हो आप, तो आत्मा को कैसे समझ के याद किया बताओ? मैंने पूछा आत्मा कैसे समझा, परमानंद ने पूछा ही नहीं। पहले बताओ बाबा ने आज क्या कहा, आत्मा समझो पहले। हाँ वही बताओ, हाँ कैसे रियलाइज किया? मैंने आप रियल माना सत्य, असत्य तो नहीं है, आत्मा है तो रियलाइज कैसे किया? और कौन बताएगा भाई, बताओ वकील साहब बताओ। हाँ क्योंकि अब हर टाइम सुनते रहते हैं, अभी भी एक 5-6 दिन पहले सुन के आए, और इनके हाथ में प्रिंटेड कॉपी, हार्ट वालों में प्रिंटेड देते हैं, हर ग्रुप में रहते हैं, तो मैंने कहा इनको तो याद है क्या, पूछो जब नंबर बताओ पूरा बताओ। वकील साहब को सारे कोर्ट केस याद रहता है ना, तो इनको भी याद रहेगा बताओ। हाँ एक ऊपर नीचे किया, तो याद रखना इतना सहज चीज है, आत्मचिंतन परमात्म चिंतन दो ही चीज है, कंफ्यूज नहीं हो, गड़बड़ में नहीं करो, बहुत कुछ नहीं है, इतना सहज राजयोग नाम लिखा है। आत्मचिंतन करो और परमात्मा चिंतन, और कुछ किसी की चिंतन की जरूरत नहीं है, उसी से विकर्म विनाश होंगे कि आत्मा के अंदर पाप है। परमात्मा के चिंतन करें उसके शक्ति से, जैसे आप इधर बैठे हो बाहर सूर्य आता है, आप इधर बैठे हो सूर्य की किरणें आपको मिलेंगी, मिलती है नहीं है ना, तो सूर्य की किरणें चाहे शरीर को बाहर लेके जाओ और कुछ करना पड़ता है नहीं, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, चाहो या नहीं चाहो पसीना निकाल देता हो, है ना। तो ये सूर्य भी आया हुआ है, ये सूर्य किसका पसीना निकालेगा, शरीर का, लेकिन आत्मा कहां है, शरीर के अंदर है, उसको बाहर लाना पड़ेगा ना कि अंदर लगे मिलेगा, अंदर बैठे तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, बाहर लेके गए ना, शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, उसकी किरणें शरीर पर पड़ेंगी तो मिटेगा, आत्मा को मिलेगा, आत्मा को बाहर लाना है, तब का आत्मा को जागृत करो, आत्मा समझो। तो आत्मा समझने के लिए जब भी बैठते हो अपने आप से पूछो, नहीं तो हर समय मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, वही याद रहता है, पूछो मैं कौन, किसको पूछा, तो दो आत्मा है, एक ही है, मैंने आपसे पूछा बहन जी आपका नाम, तो आप किसको पूछेंगे, आप किसको पूछेंगे, है अपने आप को, आपके अंदर दो आत्मा तो नहीं है ना, एक ही है, तो आप किसको पूछेंगे, दो चाहिए, मैंने माता जी को पूछा माता जी आपका नाम, तो आप बोलेंगे ना, तो आप किसको पूछते हो मैं कौन, बुद्धि ने जो ज्ञान सुना बुद्धि को याद है, मन पूछता है, मन बुद्धि है ना, भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, दो हाथ जोड़ते है ना, आत्मा के भी दो हाथ है, मन पूछता है मैं कौन। हाँ उस दिन बाबा ने कहा था मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, फिर मेरा रूप कैसा है, फिर मेरे गुण कैसे हैं, मेरे सात गुण है, फिर मैं क्या करता हूं आत्मा, इन आंखों से देखता हूं, योग में बैठे कौन गया कौन इधर आया, ऐसा देखते रहेंगे तो योग लगा रहे हो कि इधर उधर देख रहे हो, हाँ शरीर को यूज नहीं करो। फिर पांचवा मैं कहां से आया, परम धाम से, है ना, ये पांच प्रश्न आत्मचिंतन करो, क्या आत्मचिंतन करेंगे, प्रश्न आएगा ना, जैसे बहन जी कहते एकदम परम धाम चले गए, अपने आप जाएंगे नहीं, अगर अपने आप नीचे जाओ यहां से पांच मिनट तो लगेगा ना नीचे जाने के लिए, पांच सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा ना, तो अपने आप तो ऊपर नहीं चलेंगे, आपके पास मोबाइल है मेरे पास भी है, फोन कर सकते हो, नंबर चाहिए, तो आपका आवाज परमधाम में कैसे जाएगा, आपका आवाज मोबाइल का इधर नहीं आता है, तो आत्मा का आवाज कैसे जाएगा, तो आत्म अभिमानी बनो, ये नंबर चलाना चाहिए। तो पांच मिनट जब भी योग में बैठते हो तो इसको कहा श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए, अगर श्रेष्ठ स्थिति चाहते हो, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ ये करो वो करो बाद में, कम से कम एक क्रोध को जीत लो, ये विकर्म अगर आपने मिटाया नहीं है तो कितना भी ज्ञान सुन करके क्या फायदा, रावण कौन था, कितना पंडित था, क्या हुआ, है ना, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं सोचो, एक ही भगवान के एक बूंद बस, रोज एक मुरली के पॉइंट आपके साथ रहना चाहिए, आपके बुद्धि में रहना चाहिए, नहीं लिख के रखो, याद नहीं रहता, लिख एक ही शब्द कोई भी जो आपको अच्छा लगा, रोज रोज नए नए ले लो, और कम से कम चार पांच दस लोगों को सुनाओ, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, बात करो औरों से, लेकिन ज्ञान सुनाओ, ज्ञान के पॉइंट सुनाओ, आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था, तो संस्कार बन जाएंगे ना, ज्ञान के संस्कार बनाओ। तो पहले जो पुराने संस्कार, अपने आप एक कुर्सी पर दो व्यक्ति नहीं बैठेंगे ना, एक ही बैठेगा, ज्ञान बिठाया तो वो पहले वाला चला जाएगा, तो अच्छे संस्कार डालो, तो कम से कम ज्ञान बाबा देता है रोज, कहीं लाना नहीं, कुछ पढ़ने के लिए भी जरूरत नहीं, ज्यादा करते हो ऐसा नहीं, सहज करो, बहुत कठिन नहीं, नाम है सहज राजयोग, जो कठिन लगता है वो छोड़ दो, सहज चीज है, एक मुरली के पॉइंट आपके पास होना चाहिए। कभी भी किसी ने पूछा आज की मुरली के पॉइंट बताओ, तुरंत अगर आप बताते हो उसका नाम है स्वच्छ बुद्धि है, बुद्धिवान है, समझदार है, बाबा के वफादार बच्चे हैं। भगवान जो आया पढ़ाने के लिए तब कहेंगे ये मेरा स्टूडेंट नंबर वन है, जिसके बुद्धि में ज्ञान आना चाहिए, तब अच्छे विचार आएंगे, शुभ विचार सोचना चाहिए। कहां से लाएंगे, अभी कितना कुछ गलत भरा हुआ है, कोई नहीं चाहता गलत विचार करना, चाहते हो कोई? लेकिन आता तो जरूर है, बाहर तो नहीं है, मधुबन में कोई बाहर गंदगी नहीं है, यहां होते हुए भी आते हैं, कहां से आए, अंदर भरा हुआ है। तो उस जगह पर रोज एक एक बूंद डालते जाओ, पत्थर को भी गला सकते हो, बहुत नहीं चाहिए, और बहुत इधर उधर के ज्ञान सुन के अपने को कुछ खराब नहीं करो। बर्तन को मुरली से एक शब्द ले लो, बस ये सुनो वो कमेंट सुनो, इसका क्या दुनिया में बहुत ज्ञान हो गया, अलग अलग प्रकार के ज्ञान देते हैं और कंफ्यूज हो रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, मेन लक्ष्य जो था वो भूल गए, ऐसा ही कि नहीं, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? योग में बैठो तभी पूछा रिजल्ट, एक भी हाथ नहीं उठा है। कम से कम एक साल अगर शिव बाबा डॉक्टर की दवाई लिया आपने, अगर क्रोध एक नहीं गया, पांच विकार फिर कब जाएंगे, और कितना साल चाहिए, ये भी पूछना पड़ेगा ना कि नहीं? एक क्रोध अगर अभी तक नहीं मिटा और पांच विकार है, वो कब जाएंगे? नहीं तो बोलो ज्ञान ठीक नहीं है, डॉक्टर ठीक नहीं है, लोग भी पूछेंगे ना, कोई पूछेंगे इस डॉक्टर से आप 10 साल से दवाई लेते हो कैसा है ये डॉक्टर, कैसा है ना, मेरी बीमारी ठीक हो गई, तब जाएंगे ना। अगर ये कहे मेरा बीमारी कुछ नहीं हुआ, कोई आएगा? हाँ, मनुष्य आज आंखें बंद करके ज्ञान नहीं सुनता, देखता है, देख के लेता है। मार्केट में आप ऐसी जाके चीजें लेके नहीं आते हो, देख के लेते हो। मनुष्य समझदार हो गया, किसी पर विश्वास नहीं है, आगे पीछे देख के लेते हो। यहां भी ज्ञान सुनते समय देख के ले लो, मैं किसके लिए ले रहा हूं, ये भाई जा रहा है इसलिए मैं भी जा रहा हूं, वो भक्ति में होता है, लंबी लाइन लग रही है, वो जा रहे तो मैं भी जा रहा हूं, नहीं। तब कहा श्रेष्ठ ज्ञान है ये, और ये सारे कल्प के अंदर एक ही दफा मिलता है, पतित आत्मा को पावन करने के लिए। अगर किसी कारण से नहीं किया, एक साल के, एक 5000 साल के बाद, एक कल्प के बाद दोबारा चांस मिलेगा। अगर बच्चा एक साल कॉलेज स्कूल में फेल हो गया, तब कितना दूसरे साल के बाद लगेगा ना, परीक्षा लेंगे ना, एक साल चला गया, यहां भी एक साल एक कल्प ऐसे चला जाएगा। फिर चाहे कुछ भी करो आप, बाबा ने कहा अंत में बाबा भी साक्षी हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत कुछ नहीं करना है, 24 घंटे है, जो चाहे कर लो, लेकिन एक शब्द याद रखना, रोज सवेरे एक मुरली के पॉइंट ले लो। अगर किसी कारण सुना नहीं, फोन करके सेंटर से पूछ लो, इधर उधर से नहीं लेना, दूसरों को थोड़ा और थोड़ा मसाला लगाते, कोई प्योर चीजें देते नहीं है। तो सेंटर में किसी कारण नहीं गए, सेंटर से कनेक्शन जोड़ो, सेंटर से फोन, आज मोबाइल दिया उसको यूज करो, उस मोबाइल में आपको एक महीने में 50 रुपया खर्चा होगा मुरली के पॉइंट पूछने के लिए, 50 जन्म तक धनवान बनेंगे। ये ज्ञान धन दान करो, ये ज्ञान लेने के लिए, क्यों, ये ज्ञान कौन दे रहा है, अविनाशी बाप है, वो विनाश होने वाला नहीं, अविनाशी है वो, जो देता है आत्मा को देता है, शरीर को नहीं, आत्मा अविनाशी है, ये विनाशी शरीर को देता है आत्मा को, फिर वो ज्ञान भी अविनाशी है, उसका फल क्या होगा, अविनाशी है। तब कहा देने वाला कौन, अविनाशी बाप है, किसको देता है, आत्मा के लिए देता है, आत्मा की सत गति करने के लिए। तब कहते हैं सत्संग से सत गति होती है, सत्संग रोज अगर ज्ञान सुनते, अगर सत्संग किया रोज मुरली सुनी, अभी क्रोध ही नहीं गया तो सदगति हुई नहीं, तो फिर क्या फायदा, तो नाम चेंज करना पड़ेगा, सत्संग से सदगति नहीं दुर्गति होती है, ऐसा लिखना पड़ेगा, सत्संग से सदगति नहीं होती है, दुर्गति होती है, ऐसे। तो फिर तो पूछ लो अपने आप से, थोड़ा समझदार बनो, बहुत नहीं थोड़ा सा, कि मैंने क्या किया। मैं इस ज्ञान में चल के कोई पूछेंगे क्या किया आपने? पहले मंदिर में जाते तो भी अच्छे थे, हाँ, और अभी क्या कर रहे हो? तो इस केले का बहुत ज्ञान नहीं, साधारण, तब सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है स्थिति। स्थिति माना आपकी अवस्था, अवस्था माना आपके विचार, फिर आपकी चलन, फिर आपके बोल, फिर आपके कर्म। दैवी कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे, तब के दैवी कुल के है ये, तब ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग तो आएगा, सत्युग अपने समय पर आएगा। अभी रात हुई, दिन आएगा कि नहीं आएगा? समय पर आएगा, आप उठो या नहीं उठो, आएगा ही दिन कि नहीं आएगा? सूर्य भी सो जाएगा, ऐसा है? आप सो जाओ, समय पर सूर्य आएगा, ये चक्कर चलेगा। तो हम कहां होंगे वो पूछ लो। सत्युग के समय पर सत्युग आएगा, हम कहां होंगे? अभी समय है, और बहुत कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ही, दो ही काम करना है बस। क्या करना? एक, हमारे बुद्धि में आज की रोज की एक मुरली के पॉइंट याद रहना चाहिए। इसमें कोई तकलीफ है किसी को? बहुत ज्ञान नहीं का, फरिश्ता बनो, ये करो वो करो, बाद में देखेंगे। तो एक मुरली के पॉइंट सारे दिन में सवेरे सुना, रोज याद रह सकते, इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ? याद रहेंगी? कैसे भूल जाते हैं? नहीं भूल जाते ना, तो उसका उपाय कुछ बताओ। हाँ है ना, तो उसके लिए क्या कहा? अगर भूल गए तो उसका कोई उपाय होगा ना? ना, योग नहीं, योग तो बाद में, ज्ञान की बात। ज्ञान भूल गए, सवेरे सुनी याद ही नहीं रहती। शाम को अगर किसी ने पूछा, माता जी आज सेंटर में नहीं गए थे, आप गई थी, बताओ मुरली बाबा ने क्या सुनाया? बच्ची बहन जी मैंने लिखा था, सुना था, भी याद ही नहीं है। तो क्या उपाय उसका? ऐसे छोड़ देंगे कि कुछ करना पड़ेगा ना? तो क्या करेंगे आप बताओ? ठहरो, नहीं नहीं वो बताएंगे, आप बताओ। हाँ आपने उसको सोचा? भूल तो जाते हैं। नहीं, एक कागज पर एक शब्द लिख करके रखना, घर में टेबल पर रखना, और जब नाश्ता करने बैठते हो बाबा को याद करो। का क्या याद करेंगे? तो बाबा ने आओ पढ़ो, खाना नाश्ता करने बैठो, मुरली के बैठ, बाबा बाबा आज आपने ये कहा था, ये बाबा की याद हो गया ना, ये करते नाश्ता करो, बस हो गया। फिर दिन में खाना खाते हो, फिर से पढ़ो, याद नहीं है, लिख के रखा है, पढ़ो खाना खाने बैठो, हो सकता है। रात को खाना खाते हो, पढ़ो खाना खाने बैठो, कम से कम तीन दफा तो कर सकते हो। याद नहीं करके छोड़ो नहीं। हाँ अभी याद रखना, रोज मुरली से सबसे सहज चीज जो आपको अच्छा लगा वो लिख के रखना, एक शब्द लिख दो अपने भाषा में। नाश्ता करने बैठते हो, याद नहीं है, बाबा क्या, बाबा को याद कर, बाबा ने कहा याद करके खा लो, तो बाबा आपने क्या कहा था आप सवेरे, लिख के पढ़ के नाश्ते पर जाना। हाथ धो के जाते हैं ना, ऐसे नाश्ते पर थाली लेके जाएंगे ना, तो मुरली का एक शब्द पढ़ो जाओ। दिन में खाना आते ही, खाना खाने जाना है, पहले मुरली पढ़ के जाना है, सारी मुरली नहीं एक शब्द। रात को खाना खाने जाते हो, एक शब्द पढ़ो जाओ, इसमें कोई तकलीफ है? इतना ही काम करो। फिर और एक काम करना, फिर वो जो सुना लिख पढ़ा आपने, तो किसी न किसी को दान जरूर करो। कोई बहन, माता जी मिली, बहन जी मिली, बहन जी आज बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया था, दान करो तो उच्च पद बनेंगे। नहीं तो सत्युग में जाकर के वहां भी दास दासी बनना पड़ेगा, क्योंकि दान नहीं किया। तो वो एक शब्द सवेरे, दिन में, शाम को, कभी नहीं कभी, कोई मिला नहीं, फोन करके बताना किसी को, चलेगा? ये दो ही काम करना है। हाँ उसका भी बताओ, जो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकता है, तो उनके पास फोन लगाना तो आता है, तो फोन करे किसी को। हाँ फोन भी नहीं है, बहुत बुजुर्ग है, घर में कोई है, बच्चे पोते कोई ना कोई है, उनको पूछो, कल की पुरानी मुरली ले जाओ, पढ़ के बताओ, बोलो। कोई ना पड़ोस में कोई ना कोई है, प्यास लगी, पानी इधर नहीं मिलता, जहां मिलता जाके पियेंगे ना, प्यास चाहिए, पड़ोस में इधर उधर कोई है उनको पूछो, उससे लेके आओ। नहीं तो सेंटर से पुरानी मुरली लेके जाओ, बच्चे हैं, घर में कोई ना कोई तो है, उनको बोलो पढ़ के बताओ, वो बहुत उपाय है। ठीक है, हो सकता है ना कि नहीं? किसी को तकलीफ है? हाँ, हमने कहा बहुत ज्ञान नहीं सुनाओ, थोड़ा सा सुनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल करके बताना। जैसे देखो माता जी कहते मैं कल से जरूर करूंगी, कुछ करेंगे तो फायदा है ना, नहीं तो ज्ञान सुनाया कुछ फायदा नहीं, बहुत अच्छा लगा इतना ही। कल हर एक के जेब में मुरली के पॉइंट होना चाहिए, अभी जल के गांव नहीं अमृत के गांव होना चाहिए। हाँ, जल गांव मतलब पानी भर जाएगा पूरा, नहीं अमृत का गांव। ठीक है, शिव बाबा को याद करो। तो समझ में आया, ज्ञान बहुत सुनने जाओ तो अपनी स्थिति कहाँ है? सुनने से स्थिति नहीं होती है, सुनने के बाद कुछ समझ में आया, कुछ आचरण में लाया तो हमारी स्थिति उच्च स्थिति बनती है। तो अच्छी स्थिति वाले ही अच्छे स्थान पर पहुंचते हैं। अच्छा स्थान स्वर्ग, तो स्वर्ग में जाना कि परम धाम में जाना के बैठना है? थोड़ा परमधाम में बाबा के साथ बैठना चाहते हो? जो समझते हैं बाबा के साथ परमधाम में थोड़ा दिन बैठते हैं तो वो हाथ उठाओ, कौन चाहते हैं? हाँ देखो माताजी चाहती है ना, परमधाम में रहना अच्छा है ना, स्वर्ग में जरूरत नहीं है, तो वहां शिव बाबा के साथ बैठेंगे, है ना? गुड, दो और एक तीन, और कौन है? चार और पांच छह, भाई कौन है? गुड, हाँ, अरे वकील साहब भी तो बाद में आएगा, वकील का काम तो बाद में, कलयुग में, सत्युग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं। तो ये आपने अच्छे आधा अच्छी तरह से नींद करना, ऊपर त्रेता लास्ट में कलयुग में आएंगे, चलेगा ना? हाँ, बाबा के साथ अच्छी तरह से बैठ सकेंगे उधर। अच्छी बात बताया, सही बात बताया, है ना? परमधाम में आराम से रेस्ट कर सकते हैं, सत्युग में आके क्या करेंगे, फिर से कलयुग आना ही है। हाँ, इसे इसको भी कहते हैं समझदार। हाँ, तो ऐसे समझदार हो तो बाप आया है बच्चों को वर्षा देने, और वकील साहब आप क्या कहते हो, परमधाम में बैठेंगे? नहीं, आपने कहा तो मैं हाथ उठाया, आपने मैं उधर बैठूंगा थोड़ा समय, तो उधर एक सेकंड मिल के आना, तो तुरंत एक सेकंड हाथ लगाना आ जाना है। तो आपने कहा मैं उधर बैठूंगा थोड़ा समय, नहीं सत्य में कोई वक्त कोर्ट भी कुछ नहीं होगा, चलेगा? सत्युग में नहीं होगा, त्रेता में नहीं होगा, कलयुग में आना पड़ेगा। हाँ, इसलिए सोच लो। तब कहा, ज्ञान बहुत सुनेंगे ना, लेकिन अवस्था कहाँ है? तब कहा कि श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए। श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ कौन है? एक शिव बाबा है, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं है। देखो, मेरा भी पवित्र रही तो भी सत्युग में नहीं आएंगे। तब आपको एग्जाम्पल दिया, देखो उसने 2 साल हिमालय पर तपस्या किया तो भी क्रोध ही नहीं जीता। तो उस सन्यासी ने देख लो कितना, 27 साल जंगल में रहा, और 5 यूनिवर्सिटी वालों ने उसको डिग्री दिया है, किताबें लिखी, लेकिन क्रोध पर जीत ही नहीं पहन सकता है, कहता है हो ही नहीं सकता है। तो बताओ ज्ञान कहां है, किधर है, दुनिया में है? तब बाबा ने कहा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। लेकिन बहुत नहीं चाहिए, एक एक बूंद ले लो, भगवान के एक बूंद के प्यासे, रोज एक एक बूंद ले लो, 30 दिन में 30 बूंद आपके जीवन में आएंगे। देखो राम वनवास में गया, जाते समय बहुत साधु संतों ने उसको क्या दिया, अस्त्र दिया, वरदान दिया, राम तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाई आएंगी, बहुत समस्या आएंगी, ये अस्त्र ले लो, ये अस्त्र ले लो, है ना? तपस्या करने वाले थे, दिया। अंत में पंचवटी में एक जगह ऐसा होता है, लक्ष्मण गया, सीता भी गई, तो राम भी, राम के सामने रावण के सैन्य हावी हो जाता है, सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तब प्रश्न आता है क्या करूं, आकाशवाणी होती है, राम आपके पास ये अस्त्र है, ये यूज करो। तो वो अस्त्र छोड़ते ही सब मूर्छित हो जाते हैं। तो आकाशवाणी के आकाश से अस्त्र आया, तो क्या आया? अस्त्र उसके पास था लेकिन याद नहीं थी, ऊपर से आवाज आया। तो आप भी कहते हो बाबा मुझे टचिंग देता है, तो कैसे देगा? ज्ञान सुनाएगा? नहीं, शरीर तो नहीं है, ज्ञान सुनाने के आधार चाहिए। तो जो मुरली आपने दिए अस्त्र है, एक एक मुरली के पॉइंट अंदर जमा करते हो, संसार में चलते हो, कोई परिस्थिति ऐसी आती है, विघन आता है, क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकता है, तब बाबा बच्चों को टचिंग देता है। बच्चे तुमको उस दिन ये कहा था? हाँ, बाबा ने कहा था ऐसे करो तो ऐसा होगा। तो वो किसने, कैसे बाबा ने ऊपर से ज्ञान दिया? ज्ञान आपके अंदर है, जो रोज एक एक मुरली के पॉइंट जमा करते हो, ऐसे अस्त्र जमा करो, जब परिस्थिति आएंगी आपको याद नहीं आएगा, बाबा शक्ति देता है। सीढ़ी के अंदर सब भरा हुआ है, करंट दिया, सीढ़ी चालू हो गया, करंट चाहिए। तो बाबा ने कहा मेरे श्रीमत के अनुसार मेरा श्रीमत रोज जमा करो अंदर, एक ही पॉइंट, एकदम बहुत भरो तो याद नहीं रहते, इतने बुद्धि सतो प्रधान नहीं है, रोज एक ही बूंद बस, सारे दिन में बार बार अपने को पढ़ाते रहो, दिन सवेरे दिन में शाम को 3 दफा खाना खिलाते हो, सवेरे दिन में शाम को, है ना? बाबा की याद में खाओ, कहा कैसे याद, क्या याद करेंगे? हाँ, बाबा ने जो कहा वो याद आना चाहिए। आज की मुरली श्रीमत है, वही ना, क्या और क्या, बाबा ओम शांति करके खाना खा लो, क्या याद करेंगे? जो बाबा ने आज श्रीमत दिया वो याद। तो सवेरे दिन में शाम को, हो सकता है? हाँ, तब आप कहेंगे हमारी अवस्था योग में बैठो, तब उसकी विधि ये चलते फिरते सारा दिन में कर्म, ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। अगर किसी को देखते गलत विचार भी आता है, नहीं ऐसा नहीं, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं बाबा ने कहा था ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में क्या विचार आया आपको पता है, मुझे पता है, तो मेरे मन को ठीक कौन करेगा, मुझे करना पड़ेगा ना, मैं मना कौन, बुद्धि, कैसे करेगा, दवाई ज्ञान, तो ज्ञान से ठीक कर सकते हो, नहीं तो अपने आप मन आपके वश में नहीं आएगा, मन को घोड़ा का ये तूफान है, घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कौन करेगा, ये ज्ञान, बुद्धि के अंदर रोज एक एक पॉइंट भरो तो बुद्धि ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान से भर जाएगी, तो वो ज्ञान अपने दूसरों के लिए नहीं अपने मन के ऊपर कंट्रोल करो, तब कहा मन जीत जगत जीत, पहले मन को जीत लो फिर दूसरों को जीतना, दूसरों को ठीक करने जाओ पहले अपने को ठीक करो, समझ में आया कि नहीं, जलगांव वालों को समझ में आया, हाँ क्या करना चाहिए, तो हो सकता है इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, एक मुरली के पॉइंट याद रखने में कोई तकलीफ है, कभी भी किसी ने पूछा तो बता सकते हो, नहीं भूल गए ढूंढते हैं, हाँ पहली परीक्षा ये, ज्ञान के बिगर गति नहीं, तो वो ज्ञान आप यूज करेंगे आज, कि आज बाबा ने ये कहा था, आज ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को पढ़ाते रहो, तो ये पढ़ाई पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, सुनने से नहीं होगा, तो अगर अवस्था ठीक करना चाहते हो एक ये करो, दूसरा दो ही काम, सवेरे और शाम 15 मिनट, ज्यादा नहीं आधा घंटा बैठ नहीं सकते, 15 मिनट बैठो बस, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, सवेरे 15-20 मिनट, शाम को 15-20 मिनट, तो बैठ के आत्मा समझ मुझे याद करो का, कैसे करेंगे, हाँ तो वो भी आराम से सवेरे आके बैठते ही, आज बाबा ने कहा आंखें बंद नहीं करना, भक्ति में आंखें बंद करते हो, आंखें खोल के इधर बड़ा चित्र है, वो भी बताया शरीर को देखते हुए भी इनके लिए सोचना नहीं, शुभ बाबा के लिए विचित्र को सोचो, देख रहे इनको, इन बहन जी को लगेगा मैं इनको ही देख रहा हूं, मैं उस तरह सोच रहा हूं, इन आंखों से यहां देख रहा हूं, सोच रहा है वहां शुभ बाबा कहां है क्या करता है ना, तो इधर देखते हुए सोचो, उधर आंखें खोल के बाबा का चित्र देखते रहो आराम से, तो क्या सोचेंगे वो बताओ जल्दी जल्दी, योग में बैठकर बाबा ने कहा निराकार के लिए सोचो, वो क्या सोचेंगे, वो मुझे आता ही नहीं, कौन सिखाएगा, बहन जी बताओ, हमको तो आता है, हम योग में बैठकर क्या बाबा के लिए सोचो, बाबा गुणवान है, गुणों का सागर है, सोच के बताना, ऐसे नहीं, बाबा सर्वशक्तिवान का गुणों का सागर श्री कृष्ण है, सर्वगुण संपन्न का सर्वगुण शिव बाबा का नहीं, सर्वशक्तिवान का, रोज मुरली में आता देखना, मैं कौन, सर्वशक्तिवान, सर्वगुणवान तो श्री कृष्ण, तभी तो मैं पूछा कौन, क्या याद करेंगे, हाँ तो क्या सोचेंगे, इसलिए कहा विधि पता होना चाहिए, बहुत कुछ ज्ञान सुना तो जो रियलिटी है वही पता नहीं अभी तक, तो अभी सुनना अच्छी तरह से, कल सवेरे योग में बैठकर एक को भी नींद नहीं आनी आएंगे देखना, नहीं तो इधर आके कोई फायदा नहीं, बैठे नींद आई तो क्या किया, तो आराम से बैठो, बैठ के आंखें खोल के बैठना और इधर देखते रहो आराम, आंखें खोल और अपने आप से बात करो, मैं कौन, धीरे से एक एक तुरंत बुद्धि कहेंगी मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, ठीक है, फिर दूसरा अगर मैं शुभ बाबा का बच्चा हूं मेरा रूप कैसा है, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं, ठीक है, तीसरा मेरे गुण कौन से हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण है, जब मैं परम धाम से आया था कितना पवित्र था, ऐसा मुझे अभी बंद करके जाना है, जब मैं आया था कितना शांत शीतल था, जब मैं आया था कितना सुखी था, जब मैं आया था शिव बाबा ने सर्वशक्तियां दी थी सहन करने की समाने की निर्णय करने की परखने की, मैं जब आया था शिव बाबा ने ज्ञान भी दिया था, ज्ञानी तो आत्मा था, और जब मैं आया था बाबा ने कहा बच्चे मांगना नहीं संतुष्ट आत्मा, क्यों सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हो, मांगने वाला नहीं। आज बाबा ने मुरली में कहा मांगने वाले नहीं संतुष्ट आत्मा और आनंद स्वरूप भरपूर आत्मा भगवान का बच्चा हूं। इस धरती पर आए तो वो याद करो मेरे गुण कौन से थे, याद आया 5-7 गुण है। चौथा मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं, मैं इन आंखों से देखता हूं, अभी आंखों से इधर उधर नहीं देखना है, मुख से बोलता हूं लेकिन अभी मुख से कुछ बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं, शरीर का कोई काम नहीं है, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। तो क्यों बैठा हूं इधर, शिव बाबा को याद करने के लिए। शिव बाबा कहां है, परम धाम। कौन है वो, क्या याद करेंगे उसको, शिव बाबा को क्या याद करेंगे, हमारा पिताजी उसके पास दो कार है इतना पैसा है ऐसे बोलेंगे ना, तो शिव बाबा के पास क्या है, शिव बाबा के पास 8 शक्तियां है, शिव ने शक्ति को दुर्गा को अष्ट शक्ति दिया, अष्ट शक्ति ना कौन सी है वो मुरली में आता है देखना, नोट करना सारे मुरली के पॉइंट। बाबा ने कहा बच्चे मैं पवित्रता का सागर हूं, कहा कि नहीं आता है मुरली में, हाँ पवित्रता का सागर हूं, हमारा बाप कैसा है, पवित्रता का सागर है, कंपेयर करो, मांगो नहीं, बाबा आप पवित्र है मैं आपका बच्चा हूं, मेरे और आप में अंतर कितना है, कोई कहेंगे मुझे भगवान का बच्चा हूं, बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, क्या करो, बात करो, ज्ञान का सागर है, सिखाएगा शक्ति देगा। बाबा आप कभी गुस्सा नहीं करते हो, शांति के सागर हो, बताता है शांति धाम रहने वाला शांति का सागर हो। शिव बाबा कौन, आनंद का सागर है सदा भरपूर। शिव बाबा कौन, ज्ञान का सागर, ठीक है। शिव बाबा कौन, शिव बाबा कौन, दुख हरता सुख करता। शिव बाबा कौन, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। शिव बाबा कौन, भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, तन मन धन समय श्वास सेवा में कैसे लगाओ, भाग्य विधाता का। और आठवां दिव्य बुद्धि दाता है, तब माताएं मंदिर में जाते भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, दिव्य बुद्धि दाता, भाग्य विधाता। देखो मुरली में सारे पॉइंट्स आते हैं, नोट करना जब भी आता है। शिव बाबा कौन, दुख हरता सुख देता और कोई नहीं दे सकता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। शिव बाबा कौन, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। ये 8 मुख्य शक्तियां है, एक एक शक्ति लेके मांगो ने कंपेयर करो, हमारा पिताजी कैसा है, क्या करता है, बाबा देख लो कितना पवित्र है, मैं कैसा हूं, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तब मेरे साथ जाएंगे, नहीं जलगांव वाले पीछे पीछे जाएंगे, बारात के रूप में जाएंगे, साथ में जाएंगे कि बारात में जाएंगे, बारात में जाना अच्छा है ना, हाँ साथ में जाना है, जैसा बाप वैसा होना पड़ेगा ना। तो बाबा की 8 शक्तियां, एक एक शक्ति लेके बात करो, बाबा आप किस में पवित्र हो, आप कैसे शांति का सागर हो, मैं आपके जैसे कैसे बनूं, आत्मा समझ, शिव बाबा से ये बात करनी है। अगर इसमें आपके 15 मिनट कोई इधर उधर के विचार नहीं आया तब कहेंगे योग लग गया। अगर ऐसे 1 महीना रोज करो, देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं धीरे 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 कम होते जाएंगे, तब आपको विश्वास होगा ये गोली खाने से ये सिर दर्द ठीक हो गया। तब तक विश्वास नहीं होगा, गोली खा रहे सिर दर्द गया ही नहीं है, क्योंकि योग तो रोज कर रहे हो, तो क्रोध ही नहीं गया, पता नहीं ये योग ठीक नहीं है ऐसा लगेगा ना। हाँ डॉक्टर पर दवाई पर विश्वास तब होता है कि विधि चाहिए, कम से कम मिनिमम 1 महीना चाहिए, रोज सवेरे 10-15 मिनट शाम को 10 विधि पूर्वक, जैसे वकील साहब ने किया ऐसा नहीं करना, ऊपर नीचे कर दिया, हाँ ऊपर नीचे नहीं करना, एक्यूरेट होना चाहिए, मैं कौन, देखो लिखत में भी दिया मेरा, अब भी सुन के 8 दिन पहले सुनाया था, आप नहीं था, हार्ट वाले में था ना, मिला था, आप और माता जी मिली थी शांतिवन में, हाँ मिला था, अभी तो कैड में मिला था, अभी 9 तारीख तो था नीचे, नहीं था, नहीं था, अच्छा मुझे लगा 9 तारीख को, मैं उसके पहले में मिला था। तो उस समय 5 प्रश्न चाहिए, ये बाबा का नंबर है, इसको कावत कहता है बाबा आत्मा समझो। बहन जी तो मुझे दिखाई दे रही है, फिर भी बहन जी को कैसे समझू? बहन जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, आप क्या कर, अब कौन है समझ में आया? मैं आत्मा पता है, कौन सी आत्मा? अपने आप से पूछो, पाप आत्मा हूं। हर एक को पता है मैंने कौन से पाप किया है, हर एक जानता। मैं कहूं अरे पुण्य आत्मा हो, आप जानते नहीं बहुत पाप किया है, तो आपके दिल से निकलेगा नहीं मैं पुण्य आत्मा हूं। इसलिए अपने आप से पूछो मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा रूप कैसा है, मेरे गुण कौन से है, ये आत्मचिंतन है। फिर परमात्म चिंतन करो, परम प्रभु कौन है? पवित्रता का, हमारा बाप पवित्रता का सागर, हमारा बाप शांति का सागर। बाबा मैं आपके जैसे क्रोध मुक्त कैसे बनूं? कोई कहेगा मुझे भगवान का बच्चा है ये? तो रोज बात करो, बाबा अभी तक क्रोध गया नहीं, आप कहते हो बच्चों को शांति देने आया हूं, ये कब जाएगा, क्या करूं इसके लिए? उसकी दवाई बता दिया माता जी को, क्रोध अपने आप नहीं जाएगा, क्रोध को मिटाने की दवाई पहले बताया, कौन सी? एक हफ्ता 10 दिन आपके पास एक मुरली के पॉइंट होना चाहिए, 10 ही दिन, 15 दिन नहीं चाहिए, रोज 10 दिन एक मुरली के पॉइंट 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 3-4 दफा औरों को सुनाना, और 10 दिन के अंदर देखना क्रोध अपने आप छोड़ के जाएगा। ये दवा है क्रोध, छोड़ जाओ क्रोध जाओ अपने आप नहीं जाएगा, हर बीमारी की दवाई है, समझ में आया? इसलिए पहले तो क्रोध छोड़ना चाहिए, आपके पास है दिखाओ, कैसे छोड़ सकते हैं उसको, कहां छोड़ेंगे? दवा ले लो, चलेगा? समझ में आया क्या करना चाहिए? ये दो ही काम करो, एक ज्ञान और एक योग, दो ही चीज, और कुछ नहीं चाहिए। धारणा अपने आप होंगी, जो मुरली के पॉइंट सुना वो याद है तो उसका नाम है धारणा। 2-3 सवेरे से शाम तक किसी न किसी को सुनाते रहते हो तो याद रहता है, ऐसे धारणा अंदर डालते जाओ तो याद रहेगा ना, 1 महीने के बाद भी याद आएगा उस दिन बाबा ने ये कहा था। लेकिन कम से कम 2-3 दफा पढ़ाना चाहिए, 1 दफा पढ़ाने से याद नहीं रहता, संस्कार नहीं बनता है। 2-3 दफा सवेरे से औरों को सुनाना चाहिए, कभी किसी ने फोन किया बात करो, जेब में लिख के रखा है पढ़ के बताओ आज बाबा ने ये कहा था, इसमें कोई तकलीफ है? कर सकते हैं? तब देखो, तब दूसरे नेक्स्ट ईयर बुलाएंगे जलगांव वालों को, क्रोध मुक्त जो हुए उनको, क्रोध मुक्त नहीं होते उनको नहीं होगा, फाइनल पक्का, गुड ठीक है जी, पक्का हो जाए, क्रोध मुक्त करके आएंगे ना, हाँ गुड, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। अभी फिर से हाथ उठा, बाबा देखेगा बच्चे, अभी 1 साल ले लो, 1 साल क्योंकि 1 महीना, 1 महीने के अंदर क्रोध मुक्त जो होंगे दिल से, बाबा देखता है ऊपर से, तो मधुबन में बाबा आपको पता होना चाहिए, मधुबन में हर एक व्यक्ति को बाबा देखता है सुनता है, पता है आपको, बहुत दफा सुनाया होगा क्लास, एक बहन जी ने बाबा के कमरे में बताया, तुरंत बाबा ने शांतिवन में जवाब दिया, बाप गुलजार दादी के तन में आता था, अब भी 5-6 साल पहले यहां से बताया, बाबा ये ठीक नहीं किया आपने, तुरंत बाबा ने शांतिवन में उसको बुला के बताया, बच्ची ये ठीक है, हर एक का आवाज सुनता है। तो अभी हाथ उठाओ दिल से, बाबा देख रहा है, भाई जी हम 1 महीने के अंदर क्रोध मुक्त होके दिखाएंगे, जो कर सकते हो हाथ उठा, जबरदस्ती नहीं उठाना, मैं देख लो अच्छी तरह से कौन कौन है। हाँ नहीं ज्यादा बात नहीं, पहले अपना तो कर लो एक पहले अपने को तो करो, एक ठीक हो गया आपको देख के 1000 लोग चलेंगे, अरे ये क्रोध मुक्त हो गया, 1000 लोग चलेंगे देख कर गए, ठीक है गुड, ओम शांति। अभी ताली नहीं बजाओ, क्रोध मुक्त होने के बाद, परीक्षा में पास होने के बाद ताली बजते ना, हाँ पास होना चाहिए, हाँ नहीं पास होने के बाद ताली।